अनतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। और हर एकादशी की तरह हम महान वैष्णवों की कथा सुनते आए हैं, विशेष करके दक्षिण भारत के द्रविड़ देश के आलवारों की कथा कई एकादशियों से चल रही है। आज तक हमने पहले आठ आलवारों की चर्चा की है। पिछली बार पेरी आलवार या विष्णु चित्त, इनके बारे में चर्चा हुई थी और अब नौवें आलवार आंडाल, इनके बारे में हम चर्चा आज करेंगे। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, पेरी आलवार और आंडाल दोनों का जन्म कृतमाला या वैगई नाम की नदी के तट पर हुआ। उस जगह का नाम था श्री विल्लुपुत्तूर और आंडाल वैसे गोदा देवी के नाम से भी जानी जाती है, भू देवी इनके अवतार मानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री हरि के अनेक शक्तियां हैं और जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो अपने शक्तियों के साथ में प्रकट होते हैं। तीन शक्तियों में से प्रमुख हैं श्री, भू और नीला। तो श्री देवी, भू देवी और नीला देवी, तो भू देवी की अवतार हैं श्री आंडाल। और आंडाल का जन्म भी कलयुग के पहले ही शतक में हुआ, प्राय पहले 100 बरस बीत चुके थे उसके बाद उनका जन्म हुआ। वैसे इनको पेरी आलवार की पुत्री माना जाता है, परंतु वो कोई साधारण पुत्री नहीं थी। आंडाल का जन्म या आनंद आंडाल का प्राकट्य इस भौतिक जगत में कैसे हुआ, ये भी एक बहुत अद्भुत कहानी है। पेरी आलवार, जिनके बारे में हम पिछले 2 एकादशियों से चर्चा करते आए हैं, जैसा कि आप जानते हैं, एक फूल का बगीचा संभालते थे श्री विल्लुपुत्तूर में। और इस बगीचे में तुलसी देवी और अनेक फूल उगाकर, फिर तुलसी पत्तों को, मंजरी को और फूलों को एक हार बनाकर श्री विल्लुपुत्तूर में विराजे हुए भगवान वटपत्रशाही को अर्पण करते थे। ये उनकी सेवा थी, आजीवन यही करते आए थे। एक बार जब अपने बगीचे में वो खोद रहे थे तो अचानक उनको एक छोटी सी बच्ची वहां पर मिल गई, जो कि मिट्टी के अंदर थी और जिसके शरीर के ऊपर सब जगह मिट्टी था, मिट्टी के भीतर रहने की वजह से। जिस तरह की राजा जनक को भी सीता देवी प्राप्त हुई थी, आपको याद होगा रामायण से कि शिव जी का धनुष वो राजा जनक के हाथ में पहुंच गया था। ये धनुष जो है ये वास्तव में शिव जी का था। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए ये इस्तेमाल जब वो करने जा रहे थे, तब सारे देवताओं ने आकर उनसे क्षमा याचना की। शिवजी के क्रोधित होने का कारण यह था कि उनको दक्ष के यज्ञ में बुलाया नहीं गया था और यज्ञ के फल नहीं दिए गए थे। तो जब शिवजी क्रोधित हुए और अपने बाण को उन्होंने अपने हाथ में लिया तो सारे देवता जो हैं घबरा गए। और वहां आकर जब क्षमा याचना की तो प्रसन्न होकर शिवजी, जो कि आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, ये धनुष उन्होंने देवताओं को भेंट दे दी। और फिर उन्होंने देवताओं ने सूर्यवंश के एक राजा देवरात को ये भेंट कर दिया और फिर उनकी परंपरा में चलते चलते अनेक अनेक जनक महाराजाओं के पास आए। जनक एक पदवी है। जनक महाराज जो कि सीता देवी के पिता हैं, उनका नाम है शिरध्वज जनक। तो जब देवराज के हाथ में आया तो ऐसे अनेक पीढ़ियों से चलते चलते अब शिरध्वज जनक महाराज के दरबार में ये धनुष आ गया। और फिर इसके लिए जब वो यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे तो उस समय हल चलाया जा रहा था खेत में, और अचानक उन्होंने एक सुंदर सी बच्ची को वहां प्राप्त किया उस मिट्टी में। और क्योंकि हल चलाते समय हल के जगह में वो पाई गई, उस बच्ची का नाम सीता रखा गया। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर जब पेरियालवार या विष्णु चित्त जब अपने बगीचे को खोद रहे थे तो ये सुंदर बच्ची मिल गई। बड़े आश्चर्यचकित हुए पेरियालवार, और तुरंत उन्होंने इस बच्ची को अपने हाथ में उठा लिया और फिर आके उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। उसका नाम, उस बच्ची का नाम पेरियालवार ने गोदा देवी रखा। गोदा, गो शब्द के कई अर्थ होते हैं। गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब गाय, और गो मतलब एक स्तोत्र जो किसी की प्रशंसा में बोला जाता है। दा मतलब जो प्रदान करने वाली है। तो जिस जो व्यक्ति या जो महिला भगवान कृष्ण के लिए एक सुंदर स्तोत्रों की माला अर्पण करती है उसका नाम है गोदा। तो कैसे सुंदर नाम है जो कि पेरियालवार ने अपने पुत्री को, तथाकथित पुत्री को दिया। और धीरे धीरे से गोदा देवी वो बड़ी होने लगी, और क्योंकि पेरियालवार वटपत्रशाही की सेवा में मग्न रहा करते थे, पहले तो माला बनाने में मग्न रहते, कभी अपने बगीचे में मग्न रहते, तो कभी वटपत्रशाही के मंदिर में उनकी सेवा वहां पर करते, उनको फूल आदि अर्पण करते। तो इसलिए गोदा देवी को, या तमिल भाषा में उनको आंडाल कहते हैं, बहुत छूट मिलती थी और इधर उधर भागती कूदती जैसे छोटे साधारण बच्चे भी करते हैं। और ऐसे कूदते कूदते खेलते उठते बैठते वो अपनी ही दुनिया में रहती थी, हंसी मजाक करती थी, बगीचे में खेलती, कभी यहां इधर उधर जाती। और बचपन से ही आंडाल के हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति बहुत तीव्र प्रेम था, और अपने ही खेल खेल में अपने पिताजी पेरियालवार के बनाए हुए फूलों की मालाओं से वो खेलती थी। किस तरह से खेलती थी? वो पहले इन मालाओं को अपने गले में पहनती, कभी अपने सर में अपने बालों को एक आभूषण करके पहनती, तरह तरह से उसको पहनती, फिर निकालकर फिर से उसको गोल करके नीचे रख देती। जब अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर इन फूलों की मालाओं को पहनती तो एक दर्पण के सामने, आईने के सामने आकर अपने आप को देखती कि मैं कितनी सुंदर दिख रही हूं, और ये देखो ये माला ऐसे पहनूंगी तो और भी सुंदर दिखती हूं, देखो मैं भगवान से ज्यादा सुंदर दिख रही हूं, कितना अच्छा लग रहा है। तो हर रोज वो ऐसे किया करती थी। और फिर इस बात को न जानते हुए जो बेचारे पेरियालवार हैं वो भगवान को अर्पण किया करते थे। भगवान को यही हार, यही फूल अर्पण किए जाते थे, पहनाया जाता था ये हार। अब वास्तव में अर्चक विग्रह की सेवा के लिए, आराधना के लिए बहुत कड़क नियम होते हैं। शुद्धता का विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी वस्तु भगवान को अर्पण किया जाता है वो शुद्ध होना चाहिए, किसी और को पहले अर्पण नहीं किया जाना चाहिए, किसी और ने इस वस्तु को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भगवान के लिए हम भोग बनाते हैं, कोई भोजन बनाते हैं, तो इसके लिए नियम इतना कड़क है कि कहा जाता है कि केवल जो भगवान की सेवा में वहां पर अंदर है वही मात्र इस भोजन को देख सकते हैं अर्पण करने के पहले। जब भगवान को भोग चढ़ाया जाता है उसके बाद में जब ये प्रसाद बन जाता है फिर सभी को देखना है, सभी को उसका सेवन करना है, लेकिन उसके पहले अन्यों को नहीं देखना चाहिए। इसलिए कभी कभी जब भगवान का रसोई घर जो है भगवान की श्री मूर्ति से थोड़ी दूरी पर होता है, थोड़ा चल के जाना पड़ता है जहां कि अन्य लोग भी देख सकें। तो आपने देखा होगा कि भगवान के थाले के ऊपर कपड़े रखे जाते हैं ताकि और कोई इस भोग को देखे नहीं। क्यों नहीं देखे? देखने से क्या बुराई होगी? खाएंगे तो नहीं वो, फिर क्या बुराई है? इच्छा तो होती है ना। भगवान को अति सुंदर स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन अर्पण किए जाते हैं, खीर, तरह तरह के पकोड़े, कचौड़ी, पुलाव वगैरह वगैरह। तो कोई व्यक्ति, साधारण साधारण व्यक्ति देखेगा, और भोग का समय मतलब भूख का समय, हमें भी भूख लगता है, तो हम देखते अरे कितना अच्छा है, शायद हम भी खाएंगे इसको। तो ये भावना अच्छी नहीं है, इसलिए किसी दूसरे को दिखाते नहीं है। उसी प्रकार से फूल आदि वस्त्र ये सब पहले ही भगवान को अर्पण करने चाहिए। भगवान को अर्पण करने के बाद ये प्रसाद बन जाता है, फिर इनको हम स्वीकार कर सकते हैं। जैसे ये हार है, ये भगवान का प्रसाद है, भगवान को पहले अर्पण किया हुआ है, या तो फिर भगवान के शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद हैं उनको अर्पण किया हुआ है। इसको निर्माल्य कहते हैं। इसको अपने शरीर पर ग्रहण करना चाहिए थोड़े समय के लिए कम से कम, और फिर हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाता है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि अंडाल के साथ उल्टा हुआ करता था। वो अपने शरीर के ऊपर इन फूलों को, इन मालाओं को स्वीकार करती थी, अपने आप को देखती थी आईने में, वाह वाह करती थी, और फिर आराम से शांति से उसको रख देती थी, और पेरिया अलवार को पता नहीं चलता था, और वो जाके भगवान को अर्पण करते थे। एक दिन हुआ ये कि पेरिया अलवार वापस आया अपने घर में, तो उन्होंने देखा कि थोड़े बहुत फूल अभी अंडाल के बाल में अटके हुए हैं। तो पेरियालवर ने सोचा कि ये भगवान के फूल हैं जो मैंने मालाम के लिए बनाए, भगवान को अर्पण करने के लिए बनाए, ये मेरे बेटी के बाल में कैसे आ गए? तो तुरंत पूछा कि क्या बात है, ये फूल कैसे आ गए? फिर पेरियालवर को बहुत गुस्सा आया। हालांकि आज तक उन्होंने अपनी छोटी सी कन्या को, छोटी सी बेटी को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला पोसा था, बहुत स्वतंत्रता दी थी, बहुत छूट दी थी कि जो वो करे सो करे, परंतु आज वो बहुत गुस्सा हो गए और अपने बच्चे को डांटने लगे कि अरे तुम्हें पता है तुमने क्या किया, कितना बड़ा अपराध किया, कब से करती आई हो, और तुम्हारी वजह से मेरे हाथों से भी कितना बड़ा अपराध हुआ, और यही हार, यही फूल जो कि शुद्ध है, ये अशुद्ध हो गया तुम्हारे पहनने से। अब इतने दिनों से मैं ये अशुद्ध फूल भगवान को अर्पण करते आया हूं। तो ऐसे डांट कर बड़े उदास होकर उस दिन पेरियालवार ने वो फूल, वो हार भगवान को अर्पण नहीं किए, और उस एक दिन में भगवान को कोई हार नहीं मिला। भगवान का श्रृंगार हुआ लेकिन फूलों से नहीं हुआ। तो रात को बड़े उदास अवस्था में पेरियालवार सोने गए, और नींद में स्वयं भगवान वटपत्रशाही उनके स्वप्न में आए और उनको क्रोधित होकर पूछने लगे कि हे विष्णु चित्त, मुझे आज फूलों की माला अर्पण क्यों नहीं हुई? तो बड़े घबराकर स्वप्न में ही पेरियालवार बोलने लगे कि हे प्रभु, ये दोष मेरा है कि मैंने अपने पुत्री के ऊपर ठीक से देखभाल नहीं किया। मेरी पुत्री जो है रोज आपके लिए जो हार मैंने बनाए हैं वो खुद अपने शरीर पर धारण करती थी, आईने में अपने आप को देखती थी, और ये मैं नहीं जानता था, और इसलिए ये अशुद्ध हार जो है मैं आपको अर्पण करता था, लेकिन आज मुझे ये पता चला, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैंने सोचा कि ये अशुद्ध हार मैं कैसे आपको अर्पण करूं, इसलिए मैंने नहीं किए, कल से मैं बहुत सावधानी रखूंगा। तो वटपत्रशाही ने उनको जवाब उत्तर दिया, अशुद्ध? अरे ये जान लो विष्णु चित्त कि ये हार तो वास्तव में और भी शुद्ध हो गया। वास्तव में तुम्हारे हार जो होते हैं, फूलों के हार, इतने सुगंधित होते हैं, लेकिन जब ये हार अंडाल पहनती है, गोदा पहनती है, तो ये और भी सुगंधित हो जाता है, और इस हार को पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मैं इतना कहना चाहता हूं हे विष्णु चित्त, मेरे प्रिय भक्त, कि मैं इसके अलावा और कोई भी हार स्वीकार नहीं करूंगा। तो अगर तुम्हें मेरी सेवा करनी है फूलों से, तो तो पहले अपने पुत्री को इसको पहनाओ और फिर वो हार मुझे अर्पण करो, क्योंकि उसका सुगंध जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस कथा से हम क्या समझ सकते हैं? हम नकल नहीं कर सकते, हम नहीं सोच सकते कि हम भी अंडाल हैं, हम भी ऐसे फूल पहन लेंगे और फिर भगवान को अर्पण करेंगे। हम शबरी का नकल नहीं कर सकते कि हम झूठा कुछ खाएंगे फिर भगवान को अर्पण करेंगे। ये तो बहुत विशेष विशेष भक्तों की बात है, जिनका भगवान के साथ कोई विशेष निकट का संबंध है। हमें तो सारे शास्त्रों के में बताए हुए विधि विधानों का, शुद्धता का इत्यादि पालन करना चाहिए सख्ती से। परंतु इससे बात हम ये सीख सकते हैं कि भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं, भाव को ग्रहण करते हैं। भगवान को विधि विधानों से इतना ज्यादा लगाव नहीं है, उनको भक्ति भाव से लगाव है। भगवान बाहरी चीज नहीं देखते हैं, वो भक्त के अर्पण करने की भावना को देखते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बड़े भक्ति भाव से, प्रेम से गीत गा रहा है भगवान के लिए, कोई भजन हो या कीर्तन हो, लेकिन बाहरी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से वो बेसुरे आवाज में गा रहा है, अन्यों को लगता है अरे रे क्या बेसुरा आ गया, ये थोड़ा उल्टा फुल्टा हो गया, ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर भक्ति से वो व्यक्ति गा रहा है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए मात्र गा रहा है, तो भगवान उस गीत से बहुत संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति तानसेन की तरह भी गा सकता है, गंधर्व की तरह गा सकता है, लेकिन भक्ति भाव उसके हृदय में नहीं है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो नहीं गा रहा है, बल्कि इसलिए गा रहा है कि दूसरे लोग मेरी प्रशंसा करें, वाह वाह करें कि मैं कितने अच्छी गाता हूं, और दूसरों को मैं केवल ऐसे मोहित कर दूंगा मेरे गीत से। तो ऐसी भावना अगर होगी, गीत अगर भौतिक दृष्टि से कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन इसमें भक्ति भाव का अभाव होने की वजह से भगवान उस गीत को स्वीकार नहीं करते। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए शांति दूत बनकर पांडवों की ओर से, तो दुर्योधन ने उनके लिए 56 भोग का दावत सामने रखा था, लेकिन दुर्योधन के मन में छल था, कपट की भावना थी। कपटी भावना को कभी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए भगवान ने इस दावत को इनकार कर दिया, कहा कि हमें नहीं आना। और कहां गए? विदुर के घर गए। विदुर घर में नहीं थे, विदुरानी थी वहां पर। विदुरानी हड़बड़ा गई कृष्ण को देखकर, और भगवान श्री कृष्ण आए हंसते हुए और कहा, मैं तुम्हारे घर में आया हूं, मुझे कुछ खिलाओगे नहीं क्या? तो विदुरानी ने देखा, क्या खिलाऊं जल्दी में, अब कोई पकाने के लिए कोई समय नहीं, कुछ नहीं, तो घर में थोड़े बहुत केले पड़े थे, तो केले वो खिलाने के लिए आ गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने थे, तो उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, क्या करना चाहिए, क्या अर्पण करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो विदुरानी ने क्या किया, विदुरानी ने केले के छिलके उतारे, केला जो है कचरे के डब्बे में डाल दिया और केले का छिलका भगवान को अर्पण कर दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने ये केले के छिलके खाना शुरू किया। बड़े प्रेम से मजे से खा रहे थे, वाह वाह कितना स्वादिष्ट है, कितना स्वादिष्ट है। और जब विदुर वापस आए, हैरान हो गए, अरे पागल हो गई हो का, क्या कर रही हो? तब उसको पता चला कि मैं क्या कर रही हूं। तब तक ना विदुरानी को ना कृष्ण को पता था कि वो को क्या खिला रहे हैं और क्या खा रहे हैं। हाँ, कृष्ण क्या खा रहे थे? वो विदुरानी के भक्ति भाव को स्वीकार कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे। तो उसी प्रकार से तरह तरह के ऐसे उदाहरण हैं। अगर कोई सुंदर कवि है, बहुत अच्छे अच्छे कविताएं लिख सकता है, परंतु वो भजन लिखने का उसका उद्देश्य है कि मेरी प्रसिद्धि हो जाए, एक बहुत बड़ा भजन का गायक के रूप में मैं जाना जाऊं सारे समाज में, मेरे अच्छे अच्छे कैसेट छप बन जाएं, लोग मेरे कैसेट गुणे में लाखों रुपए कमा सकता हूं। तो फिर ये भावना जो है ये भगवान को प्रसन्न नहीं करता। लेकिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र, उनकी तोतली बोली, उनकी जो बकवास बातें, ये भगवान को बहुत अच्छी लगती थी। माता यशोदा की डांट उनको बहुत अच्छी लगती थी, वेदों के मंत्रों से ज्यादा। वेदों के मंत्र जो है सही छंद में, सही व्याकरण से, सब सही सही है, लेकिन जो वृंदावन के निवासियों के बोली में चाहे वो डांट हो, चाहे वो मजाक में बोला गया हो, इतना प्रेम था कि भगवान इन चीजों को ज्यादा पसंद करते थे। तो हालांकि हमारे लिए शुद्धता का नियम बहुत महत्वपूर्ण होता है भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा में, परंतु आंडाल के हृदय में इतना प्रेम था भगवान के प्रति कि इस स्वाभाविक प्रेम से, इस मासूम प्रेम की वजह से भगवान का हृदय जीत लिया गया। और भगवान बोलने लगे कि आंडाल के प्रेम ने इस फूलों की माला को और भी सुगंधित कर दिया है, इसलिए मैं इस हार को पहनना पसंद करता हूं। और पेरी अलवार आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये मेरी बेटी है, ये कौन है? ये श्रीदेवी है, भूदेवी है, नीला देवी है, कौन है ये? जरूर कोई विशेष लड़की है, ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। और उस दिन से वो समझने लगे कि मेरी बच्ची भगवान की पत्नी के समान है। पहले तो केवल उसको बच्ची के समान देखते थे, लेकिन आज से उनकी दृष्टि बदल गई अपने उनकी पुत्र की ओर। और फिर उसके बाद हर दिन विष्णु चित्त या पेरी अलवार जो भी हार बनाते थे, जानबूझकर अच्छी तरह से आंडाल को पहनाते थे और फिर उसको ले जाकर वटपत्रशाही को अर्पण करते थे। इसलिए उनका नाम हो गया शूडिकोडुत्त नाचियार। बराबर है तमिल? हाँ, कि तमिल में बोलिए क्या है? चूडिकोडुत्त नाचियार। नाचियार मतलब रानी, और चूडिकोट्टे मतलब जिसने पहना और दिया, पहना और अर्पण किया। तो वो देवी या वो रानी जिसने फूलों की माला पहनकर फिर भगवान को अर्पण किया। तो इस दिन के बाद और भी बढ़ती गई अंडाल, उम्र बढ़ती गई, और जैसे उम्र बढ़ता गया वैसे वैसे भक्ति भी अंडाल की बढ़ती गई, तीव्र होती गई। और भक्ति की भावना की तीव्रता को देखकर पेरी अलवार केवल देखते रह गए, और भी गहरे मग्नता से वो चिंतन करने लगती, श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में चिंतन मनन करती, जैसे वृंदावन की गोपियां करती। और विशेष करके उनको वृंदावन के श्री कृष्ण पसंद थे, इसलिए श्री कृष्ण लीला के बारे में सतत चिंतन मनन करती थी अंडाल, और इन लीलाओं में खो जाती थी। आपको याद होगा कि वृंदावन में भी जो गोपियां हैं, इसी प्रकार से श्री कृष्ण के विरह में कृष्ण लीला में खो जाती थी। वो आपस में आकर इन लीलाओं को फिर से प्रकट कराती थी। कोई एक गोपी कृष्ण बन जाती और एक गोपी पूतना बन जाती, और फिर कृष्ण जाके पूतना का वध करते, वो एक गोपी दूसरे के ऊपर जाके फिर वध करती उसका। एक गोपी कृष्ण बनती, दूसरी गोपी तृणावर्त बन जाती। इस प्रकार से जो भी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में किए थे, उनको बार बार गोपियां उसको प्रकट कराती थी आपस में परस्पर। और ऐसे उनके मन में जो श्री कृष्ण के विरह से उत्पन्न होने वाला दुख था, जो अग्नि जल रही थी, उसका थोड़ा बहुत शमन होता था। तो भगवान श्री कृष्ण के विरह में जो भावनाएं भक्तों के हृदय में उमड़ती हैं, केवल वही भक्त उसको जान सकते हैं, अन्यों को इसको जानना बहुत कठिन है, असंभव है। तो इसी प्रकार आंडाल भी ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में स्मरण करते रहते, प्राय अपने आप को उसी रूप में, कृष्ण के रूप में ही देखती, जैसे कि गोपियां देखती थी। कभी अपने आप को कृष्ण समझकर कालिया के ऊपर नृत्य करते हुए समझते और बोलती, दुष्ट कालिया तिष्ठात्र कृष्णोहम इति चापरा, कि हे दुष्ट कालिया, मैं कृष्ण हूं, तुम्हारे फणे के ऊपर नृत्य कर रहा हूं। यह विष्णु पुराण का श्लोक है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण की लीलाओं में मग्न होते होते आंडाल ने कई स्तोत्रों की रचना की। ये स्तोत्र दो ग्रंथों में है, एक को तिरुप्पवई कहते हैं, जो दिन के 30 श्लोक हैं। तिरुप्पवई मतलब एक दिव्य व्रत, किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। खास करके जो मार्गशीर्ष महीने में ठंडी के समय जो व्रत का पालन किया जाता है, व्रतों का पालन किया जाता है, उसके बारे में इस कविता में है। अगली बार, शायद अगले एकादशी को जब अगली बार ये कथा होगी, तो आंडाल की कविताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जबकि वो डांटती है अन्य गोपियों को, अपने आप को गोपी समझती है, अन्य गोपियों को जगाती है, अरे जल्दी जल्दी उठो उठो, अभी सुबह हो गया, ठंडे पानी से स्नान करो और चले आओ, व्रत करने का समय हो गया है। तो अपने इस विरह की भावना में तरह तरह के व्रतों के बारे में वो सोचती करती ताकि उनको कृष्ण प्राप्त हो जाए, और फिर कामदेव से याचना करती कृष्ण की प्राप्ति के लिए। और इस ग्रंथ को नाचियार तिरुमोली कहा गया है, जिसका मतलब है कि रानी के या तो देवी के दिव्य वचन। और ये दोनों ही कविताएं जो हैं ये नालायिर दिव्य प्रबंधम के एक अंश हैं। जैसा कि आपको याद होगा, ये नालायिर दिव्य प्रबंधम ये तमिल भाषा में वेद माने जाते हैं, 4000 श्लोक हैं, और सारे 12 आलवारों के श्लोकों को मिलाकर ये नालायिर दिव्य प्रबंधम बन गया है। तो खैर, इस प्रकार से और समय बीतता गया और आंडाल की उम्र और बढ़ती गई और आंडाल की भक्ति भावना और तीव्र होती गई, इतनी तीव्र होती गई कि बस वो दिन भर रात भर तरसती रहती, तड़पती रहती भगवान के लिए, जैसे गोपियां भगवान श्री कृष्ण के स्मरण के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। वृंदावन में उठते बैठते खाते पीते सोते जागते केवल कृष्ण भावना में थी होती थी। वैसे आंडाल की दशा होने लगी, और पेरियार ने जब देखा कि मेरी पुत्री की भक्ति कितनी बढ़ रही है, उम्र भी बढ़ रही है, तो जैसे एक पिता के विचार होते हैं, लड़की को बढ़ते हुए देखकर उनके मन में विचार आया उसके विवाह का, और वो सोचने लगी कि मेरे पुत्री की भक्ति ऐसी है तो कौन ऐसे योग्य व्यक्ति है जो इसे विवाह कर सकेगा, कौन है ऐसा महान भक्त यहां पर जो इसके पति बनने के लायक है। तो बड़े चिंतित रहते थे, ठीक उसी तरह जैसे जनक महाराज सीता देवी को बड़े होते हुए देखकर चिंतित रहते थे। जनक महाराज भी जानते थे कि ये मेरी पुत्री कोई साधारण लौकिक पुत्री नहीं है, ये तो स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न हुई है और इतनी सुंदर है और इतने जल्दी ही ये बड़ी हो गई है, तो इसके लिए कौन योग्य वर होगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये शिव जी का धनुष जो मेरे पास है, उसको जो व्यक्ति उठाएगा बांधेगा यही सीता को विवाह कर पाएगा। सीता देवी के सौंदर्य को के बारे में सुनकर आसपास से और दूर से भी कई राजकुमार आए, राजा आए, लेकिन जनक महाराज ने उनसे कहा कि आपको अपनी शूर वीरता का प्रदर्शन करना होगा, और इस परीक्षा में सफल होने के बाद ही आप सीता देवी से विवाह कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि परीक्षा क्या है, तो जनक महाराज ने बताया कि इस धनुष को, शिव जी के धनुष को उठाना है, और यह धनुष इतना विशाल था, भारी था, कि जब ये रथ के ऊपर रखा गया था तो 5000 व्यक्ति जो कि बड़े हट्टे कट्टे थे, रिष्ट पुष्ट थे, ऊंचाई में चौड़ाई में बड़े ऊंचे और लंबे चौड़े थे, ऐसे लोग बड़े कठिनाई से 5000 ऐसे व्यक्ति उस रथ को खींचने के लिए चाहिए थे। तो स्वाभाविक है कि ऐसे कोई राजा राजकुमार इस धनुष को हिला भी नहीं सका, उठाने की बात दूर है, उसको बांध कर फिर छोड़ने की बात दूर है। तो इनको बड़ा गुस्सा आया, इन्होंने लगा कि अपमानित हो गए हम, तो उन्होंने आक्रमण किया सब मिलकर राजा जनक के ऊपर। कई सालों तक युद्ध चला, 12 महीनों तक ऐसे युद्ध चला, और फिर जब जनक महाराज ने देखा कि अब हमारी शक्ति कम होती जा रही है, तो उन्होंने देवताओं से प्रार्थना किया, देवताओं ने सेना भेज दिया, और फिर सारे राजाओं को परास्त करा दिया राजा जनक ने। फिर जब श्री राम आए वहां पर, तो विश्वामित्र मुनि ने श्री राम को सीता देवी के सामने रखा, अब उस जनक महाराज के सामने रखा, और जनक महाराज बड़े खुश हुए और कहने लगे कि अगर श्री राम इस धनुष को उठा पाएंगे तो अवश्य मेरी पुत्री सीता देवी का हाथ विवाह में मैं श्री राम को देने के लिए तैयार हूं। फिर श्री राम ने तो धनुष उठाया ही नहीं, उसको तोड़ दिया। तो जैसे जनक महाराज को चाहिए था कि श्री राम जैसे ही व्यक्ति मेरे पुत्री के लिए योग्य वर है, और जब तक राम नहीं आए जनक महाराज बड़े बहुत चिंतित थे, ठीक उसी प्रकार से पेरी आलवार भी अपनी पुत्री आंडाल के बारे में चिंतित रहा करते थे, कौन कौन हो सकता है वर। एक दिन अपने पुत्री आंडाल के पास जाकर वो पूछने लगे कि अरे बेटी आंडाल, अब तुमको कौन से व्यक्ति से विवाह करना है, तुम्हारे मन में कोई इच्छा है क्या, बताओ। तो आंडाल को बड़ा गुस्सा आया। आंडाल कहने लगी, जिस दिन मैं इस संसार के किसी व्यक्ति से विवाह करूंगी वो मेरा आखिरी क्षण होगा और मुझे प्राण त्यागना ही होगा, मेरे प्राण खुद ब खुद निकल जाएंगे शरीर से। मैं इस संसार के किसी भी तथाकथित पुरुष से विवाह नहीं करना चाहती हूं। जैसे रुक्मिणी देवी ने भी ऐसी ही एक विचार व्यक्त किया था, जबकि श्री कृष्ण उनका मजाक उड़ा रहे थे द्वारका में। श्री कृष्ण ऐसे ही हंसी मजाक में बोल रहे थे कि अरे रुक्मिणी देखो, तुमने बहुत बड़ी गलती की मेरे से विवाह करके, क्योंकि मेरे में कोई योग्यता नहीं है और मेरे में कोई अच्छे गुण नहीं है, लेकिन तुम्हारे स्वयंवर के लिए कितने अच्छे अच्छे योग्य वर आए थे, बड़े बड़े राजा महाराजा इधर उधर से आए थे, लेकिन उनको छोड़कर तुमने मेरे साथ विवाह किया। लेकिन अभी भी समय है, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं, अभी भी चाहो तो किसी और से तुम विवाह कर सकती हो। हमें याद रखना है कि इस समय दोनों का विवाह होकर कई साल बीत गए थे, दोनों के बच्चे भी बड़े हो गए थे, उनका भी विवाह हो गया था। तो रुक्मिणी देवी का स्वभाव बड़ा सौम्य होने की वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर उनको होश में लाए तब रुक्मिणी देवी कहने लगी कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहती हूं जो कि एक चमड़े की थैली है। क्यों चमड़े की थैली? ये शरीर, ये त्वचा क्या है? चमड़ा है और ये शरीर एक थैली है। तो ऐसे चमड़े की थैली जिसमें तरह तरह के गंदी चीजें हैं और जिसके ऊपर थोड़े बाल हैं और थोड़े बहुत और वस्त्र इत्यादि हैं और अंदर सब गंदे गंदे चीजें हैं, ऐसे थैली से मैं क्यों विवाह करना चाहती हूं? आपसे अलावा किसी से और मैं विवाह नहीं कर सकती। तो यही भावना, इसी तरह की भावना अंडाल की थी कि मुझे विवाह करना है तो केवल भगवान से, और किसी से विवाह मेरे लिए संभव नहीं, इस संसार के मनुष्य से मैं विवाह नहीं कर सकती। तो फिर पेरियारवा तुरंत बोलने लगे, क्षमा करना, ठीक है ठीक है, तो तुम्हारे लिए केवल भगवान ही ठीक है पति के रूप में, लेकिन यह बताओ भगवान, कौन से भगवान से विवाह करोगी? 108 भगवानों में से कौन से भगवान? अब कौन से 108 भगवानों के बारे में पेरियारवार बात कर रहे थे? गणपति, शिव जी, विष्णु? नहीं नहीं, केवल जो दिव्य देशम में अलग अलग भगवान विष्णु के कृष्ण के मूर्तियां हैं उनके बारे में बोल रहे थे। दिव्य देशम वो प्रांत है, वो स्थान है, तीर्थ स्थान है जहां पे भगवान विष्णु के विशेष विशेष मंदिर हैं, जहां जो कि आलवारों से संबंधित है, कुल मिलाकर 108 हैं और उनको दिव्य देशम कहते हैं और सारे भारतवर्ष में फैले हुए हैं और एक केवल वैकुंठ है परम पदम, बाकी जो है सब यहां हैं, या तो दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में जैसे अयोध्या, वृंदावन इत्यादि। तो कौन से भगवान से विवाह करना चाहती हो? तो फिर अंडाल ने कहा, उनका वर्णन तो कीजिए, पहले उनके नाम बताइए और उनका वर्णन कीजिए, फिर मैं बताऊंगी मैं किन से विवाह करना है। तो फिर पेरियालवान ने 108 दिव्य देशम इनमें स्थित हुए जो भी भगवान हैं, जो भी अर्चा विग्रह हैं, उनका वर्णन करने लगे और एक के बाद एक उन्होंने सबसे पहले पांड्य देश में जितने भी दिव्य देश हैं उनके अंदर जो भगवान की मूर्ति हैं उनका वर्णन किया। फिर जो पश्चिमी भाग में जो पर्वत हैं उनके उस प्रांत में जो मंदिर हैं, दिव्य देशम हैं, उनका वर्णन किया। फिर तोंड देश में, ऐसे करते करते उत्तर भारत में और आते आते वटपत्रशाही और अंत में श्रीरंगम के श्री रंगनाथ देव का वर्णन किया पेरियालवार ने। जब श्री रंगनाथ जी का वर्णन अंडाल ने सुना तो अंडाल के आंखों में आंसू आ गए, शरीर में कंपन होने लगा और अपने मन में, हृदय में अंडाल ने ठान लिया कि मैं केवल रंगनाथ जी से ही विवाह करूंगी, यही मेरे पति हैं, यही मेरे सब कुछ है। और उनके मुख से सुंदर भक्ति के स्तोत्र निकलने लगे रंगनाथ की गुणगान में, रंगनाथ के सौंदर्य के बारे में। तो जब पेरियालवर ने सुना तो उनके मन में बहुत वो मन विचलित हो गया उनका कि ठीक है मेरी लड़की विवाह करना चाहती है रंगनाथ से, लेकिन मेरी बेटी तो एक मनुष्य है और रंगनाथ तो भगवान है, अब ये उत्सव कैसे होना चाहिए, कैसे होगा मनुष्य का विवाह भगवान से, ये सब कैसे होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा मन तो चकरा रहा है, क्या करना चाहिए। तो सोचते 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 बड़े चिंतित अवस्था में आखिर उनको नींद आ ही गई। और जब नींद आई तो सपने में स्वयं भगवान रंगनाथ प्रकट हुए, और रंगनाथ प्रकट होकर बोलने लगे कि हे विष्णु चित्त, मैं तुम्हारे कन्या से, तुम्हारे पुत्री से मैं विवाह करना चाहता हूं, और इसलिए तुम चिंता नहीं करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। जब पेरियालवार नींद से जागे, उन्होंने सोचा इस स्वप्न के बारे में, तो उनकी खुशी की सीमा नहीं रही। ऐसे लगा कि उनके हृदय से बड़ा बोझ निकल गया है। लेकिन फिर सोचने लगे, ठीक है भगवान ने कहा है, लेकिन ये होगा कैसे। उधर श्री रंगनाथ जी और एक जो पुजारी हैं श्री रंगनाथ के, श्री रंगम में, उनके स्वप्न में आए और अपने सारे सेवकों से कहने लगे उस स्वप्न के भीतर कि हे मेरे प्रिय सेवकों, मेरे विवाह का समय आ गया है। तुरंत सारे सामग्री को, पालकी को, चामर, मोर पंख इत्यादि जितना भी कुछ है सब लेकर, बड़े धूमधाम से वाद्य इत्यादि लेकर श्री विल्लुपुत्तो जाना, जहां की मेरे होने वाली पत्नी मेरी राह देख रही है। तुरंत निकलो और यहां ले आकर मेरे साथ उसका विवाह होना है। तो पुजारी जाग गए, आश्चर्यचकित हो गए, सारे अन्य पुजारियों को बताया, और फिर तुरंत एक जुलूस निकला जिसमें पालकी वगैरह थी और तरह तरह भगवान के शंख चक्र इत्यादि सब जो भी आभूषण है वगैरह, और भगवान की सेवा के लिए जितने भी सामग्रियां हैं चामर आदि सबको लेकर निकल पड़े। और चलते चलते आखिर वो श्री विल्लुपुत्तूर पहुंच गए। ये पुजारी सीधे चले गए पेरियालवार के पास। पेरियालवार के सामने हाथ जोड़कर बड़े नम्रता से, बड़े आदर से उन्होंने बताया कि भगवान का आदेश है कि आपकी कन्या का, आपकी पुत्री का विवाह भगवान श्री रंगनाथ से होना है, तो हम आप दोनों को यहां से लेकर आए हैं, लेने के लिए आए हैं। तो बड़े खुश हो गए इस बात को सुनकर पेरियालवार। लेकिन फिर सोचा, मेरे इष्ट देव वटपत्र शाही को तो पूछना चाहिए। तो वटपत्र शाही को के पास गए और कहने लगे, प्रभु ऐसा ऐसा प्रस्ताव आया है रंगनाथ से, क्या करना चाहिए, आपकी अनुमति है, आपका आशीर्वाद है, क्या करें। वटपत्र शाही में और रंगनाथ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये भक्त की भावना है, उनको अलग अलग आसक्ति होती है। किसी को वटपत्र शाही से आसक्ति है, किसी को वृंदावन के राधा गोविंद जी से आसक्ति है। तो वटपत्र शाही ने कहा, जैसा रंगनाथ कहते हैं वैसा करो। तो पेरियालवार ने कहा ठीक है। बड़े खुश होकर वो अपने घर में आए और अंडाल को बुलाया और कहा, देखो पुत्री, बहुत खुश खबर है तुम्हारे लिए, तुम्हारे इतने दिनों की जो मनोकामना है, तीव्र इच्छा है, वो पूर्ण होने को जा रही है। अब स्वयं भगवान रंगनाथ ने संदेश भेजा है, उनके भक्तों को भेजा है, देखो ये सब पुजारी आए हैं पालकी लेकर, इतने सारे सेवा के सामग्री लेकर आए हैं तुम्हें ले जाने के लिए उनके पास, ताकि तुम्हारा विवाह जो है वो भगवान के साथ में हो जाए। और फिर पालकी में बिठाया, उन्होंने अंडाल को अच्छे वस्त्र आदि दिए, अंडाल ने वस्त्र आभूषण इत्यादि ग्रहण पहनिए, पहनकर पालकी में बैठी। अब पेरियालवा सोच रहे थे, अब जबकि ये भगवान की पत्नी होने वाली है, अब कोई साधारण व्यक्ति, पापी व्यक्तियों को मेरे पुत्री को देखना भी नहीं चाहिए, देखने के लिए योग्य नहीं है ऐसे दुनिया के पापी लोग, तो सड़क में जाएगी सब लोग देखेंगे, ये ठीक नहीं। इसलिए उन्होंने उसको पालकी में बिठाया और फिर पर्दे वगैरह डाल दिए, ताकि कोई साधारण पापी व्यक्ति, सड़क का आदमी उसको देख नहीं पाए। और जुलूस निकल पड़ा। निकलते निकलते सारे वहां जो पुजारी थे, ब्राह्मण थे, सब अंडाल का गुणगान करने लगे। कोई बोलने लगा कि जय हो उस अंडाल का जिसने त्रुपवई के श्लोक कहे। तो ऐसे एक एक करके, जय हो उस अंडाल का जिसने अपने ऊपर फूल पहने और फिर भगवान को अर्पण किए। तो अंडाल के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए, गान करते हुए जुलूस निकल पड़ा और आखिर वो पहुंच गए श्री रंगम। श्रीरंगम में जब पहुंचे तो वहां बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जगह जगह खबर पहुंच गई थी। आखिर ये कोई साधारण खबर नहीं है कि स्वयं भगवान ने अपनी पत्नी को चुना है और कहा है कि जाके मेरे पत्नी को लेकर आओ, होने वाली पत्नी को लेकर आओ। तो जब वहां पर आए, पालकी आई तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धावान लोग एकत्र थे और उनमें से राजा वल्लभ देव भी उपस्थित थे। आपको याद होगा कि राजा वल्लभ देव भी पेरियालवार के शिष्य बने थे, जबकि उनके दरबार में उन्होंने एक स्पर्धा आयोजित किया था जिसमें पेरियालवार विजयी निकले थे। तो अब ये भी बड़े शुद्ध वैष्णव बन गए थे, वो भी बड़े भक्ति भाव से आकर देखना चाहते थे, जैसे अन्य लोग भी आए थे देखने के लिए कि अब क्या होगा, क्या होगा अभी। और जैसे ही पालकी वहां पहुंच गया तो सीधे मंदिर के अंदर पालकी को ले जाया गया और जब भगवान के सामने आया तो पर्दा उठाया, निकाला गया और आहिस्ता आंडाल जो है इस पालकी से बाहर निकली अपने विवाह के वस्त्रों में और एकदम हल्के से उतर के हल्के से आगे भगवान की ओर गर्भगृह के अंदर चलने लगी। सभी लोग अपने सांस को रोके हुए थे, सस्पेंस था एकदम, सब लोग देख रहे थे क्या होगा क्या होगा। ये ऐसे घटना के बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था, देखने की बात दूर है। और आहिस्ता आहिस्ता अपने आंखों को केवल भगवान श्री रंगनाथ के सुंदर रूप के ऊपर केंद्रित करके अंडाल आगे 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 चलती जा रही थी और गर्भगृह के अंदर जाकर अंडाल रंगनाथ जी के चरण कमलों के निकट पहुंच गई और वहां पे पास में आई। और उस दिन के बाद अंडाल का और एक नाम हो गया, केशव नंबी काल पिड़िपाल, सही है, जो कि केशव के चरण कमलों की सेवा करने वाली दासी हैं। और जब उनके चरण कमलों के पास पहुंच गई तो और आगे 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 पहुंची, शेषनाग जो कि उनकी शैया है रंगनाथ जी के, उनके ऊपर चढ़ गए। आपको मालूम है, आप में से कितने भक्त श्रीरंगम गए हैं, हाथ ऊपर कीजिए, बस दो या तीन ही भक्त, बहुत कम। तो श्रीरंगम में रंगनाथ जी की मूर्ति बहुत बड़ी है, बल्कि दो या तीन दरवाजों से देखना पड़ता है, एक दरवाजे से आप नहीं देख सकते। एक दरवाजे से थोड़ा भाग दिखता है भगवान के श्री विग्रह का, दूसरे भाग से थोड़ा भाग दिखता है, तो काफी बड़ी मूर्ति है भगवान की। और भगवान शयन कर रहे हैं रंगनाथ देव, और कैसे शयन कर रहे हैं, अपने हाथों को ऐसे लगाकर वो ऐसे अपने सुंदर बुखारबिंद को आधार दे रहे हैं और उनका मुख जो है वो दक्षिण की ओर है। वैसे साधारणतः जो है मंदिर में भगवान पूर्व की ओर रहते हैं, पूर्व की ओर देखते हैं, परंतु रंगनाथ जी दक्षिण की ओर देखते हैं। आपको मालूम है ना क्यों? क्यों? क्योंकि विभीषण का राह देख रहे हैं, क्योंकि विभीषण है जिन्होंने कि श्री राम से ये रंगनाथ जी की मूर्ति लाई थी। राम इसकी पूजा किया करते थे अयोध्या में और फिर उन्होंने अपने ही राज्याभिषेक के बाद विभीषण को यह भेंट दिया। रावण का वध करने के बाद विभीषण इस मूर्ति को लेकर आ रहे थे, जब श्रीरंगम के क्षेत्र में आए तो उनको नीचे उतरना पड़ा कोई काम से, और जब काम खत्म हो गया वो आए तो रंगनाथ जी उठे नहीं वहां से, तो रंगनाथ जी वहीं पर रहे और विभीषण समझ पाए कि भगवान की इच्छा है कि वो यहीं पर रहना चाहते हैं, यहीं पर उनका मंदिर होना बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी विभीषण की ओर देखते रह गए भगवान, ताकि विभीषण कई सालों में एक बार आते हैं वहां पर और कहा जाता है कि वो भी खुद भगवान की सेवा करते हैं। तो शेषनाग जो कि भगवान की शैया है उसके ऊपर चढ़ गई आंडाल और भी निकट निकट गई भगवान के। सभी लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और फिर क्या हुआ आप बता सकते हैं, क्या हुआ? अचानक आंडाल ओझल हो गई, अदृश्य हो गई, भगवान रंगनाथ के शरीर में लीन हो गई और वहां पे एकदम लोगों में हाहाकार मच गया। ये लीन होना मायावादियों का और निराकारवादियों का लीन होना नहीं है, क्योंकि आंडाल तो स्वयं भूदेवी है, और इसलिए लीन होना मतलब कि वहां से ओझल हो गई और भगवान की शिव मूर्ति के माध्यम से फिर से वो वैकुंठ धाम में भगवान की सेवा करने के लिए गई। तो ये लीन होने का मतलब नहीं है कि अंडाल का व्यक्तित्व समाप्त हो गया। तो उधर सभी लोग हैरान होकर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, पेरियालवार भी देख रहे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला, उन्होंने सोचा विवाह होगा, कुछ चमत्कार होगा, लेकिन ये होगा। और उनको एक दृष्टि से आनंद था हृदय में कि उनकी पुत्री इतनी महान भक्त है, क्योंकि वो भी महान भक्त थे। जो माता पिता भक्त होते हैं उनको अच्छा लगता है जब उनके बच्चे भक्त बनते हैं, जो खुद भक्त नहीं होते जब वो देखते हैं कि हमारे बच्चे भक्त हो गए उनको अच्छा नहीं लगता करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कितना अच्छा मार्ग है। बच्चों को भक्ति मिलना चाहिए, अनमोल धन है। और जितना अच्छा भक्त होता है पालक, उतना ही ज्यादा वो चाहता है कि मेरे बच्चे की भक्ति में और अच्छा बने। तो स्वाभाविक है कि पेरियालवार तो बहुत प्रसन्न थे कि मेरी बच्ची इतनी महान भक्त है, इतनी महान, बल्कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं एक दिव्य यंत्र बना हूं भगवान और उनकी पत्नी को एकत्र करने के लिए। ये मेरी बच्ची तो क्या, ये तो स्वयं भगवान की शक्ति है, भूदेवी है। और ये कितनी आश्चर्य की बात है कि भगवान ने मुझे चुना है इसके पिता बनने के लिए। तो एक दृष्टि से आनंद था, लेकिन दूसरी दृष्टि से अभी 15 सालों से अपने बच्चे को संभाला था, पाला था, पोसा था, आसक्ति तो हो ही थी, स्वाभाविक है। जब पेरियालवार ने देखा कि अचानक उनकी पुत्री जो है अब भगवान श्री रंगनाथ के दिव्य शरीर में लीन हो गई है, तो अपने आप को रोक नहीं पाए, फूट फूट के जोर जोर से रोने लग गए। और फिर अंदर से गर्भगृह से बादलों के गरजने के समान एक गंभीर आवाज सुनाई पड़ी कि विष्णु चुत को मेरे पास में लेकर आओ। तो जो पुजारी थे जल्दी से पेरियालवार को उनके पास लेकर आए, और फिर भगवान पेरियालवार से कहने लगे कि आप मेरे ससुर हैं, हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं। जैसे क्षीर सागर के देवता ने मेरे लिए श्री को दिया, भेंट दिया, वैसे ही आपने मुझे आंडाल को भेंट दिया। आप जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, देवता और असुरगण वसुकी सांप को रस्सी बनाकर मंदर पर्वत से मंथन कर रहे थे, क्षीर सागर का, दूध के सागर का, श्वेत द्वीप में, तो उस मंथन से कई चीजें उत्पन्न हुई, श्रीमद् भागवत के में ये वर्णन आता है। और उन अनेक चीजों में से, व्यक्तियों में से लक्ष्मी देवी, श्री देवी भी उत्पन्न हुई। और फिर श्री देवी फिर ये भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर आई, भगवान विष्णु के साथ में आई। तो उस समय से इस भौतिक सृष्टि के भीतर, इस भौतिक लीला में, सृष्टि लीला के भीतर लक्ष्मी देवी भगवान श्री विष्णु की सेवा में आ गई। तो यहां रंगनाथ देव पेरियालवार से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से क्षीर सागर ने हमें लक्ष्मी देवी दिया, भेंट किया विवाह में, उसी प्रकार से आपने भी हमें आंडाल दिया जो कि हमारी पत्नी हो गई है। और फिर उन्होंने कहा कि आपके लिए मेरा आदेश है, आप फिर से श्री विल्लुपुत्तूर चले जाओ, आप वहां पे वटपत्रशाही की सेवा करते रहना जैसा कि आप करते आए हो, अपने जीवन के अंत तक इसी तरह सेवा करते रहना और केवल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करना, जब समय आएगा तुम्हारी मृत्यु होगी और फिर तुम मेरे धाम में वापस वैकुंठ में चले आओगे, तो चलो निकल जाओ। तो फिर पेरियालवार वहां से निकल पड़े और वापस चले गए। उधर सारे प्रांत में सभी लोग इसके बारे में बातचीत करने लगे कि किस तरह से आंडाल का विवाह श्री रंगनाथ देव से हुआ है। वैसे श्री विल्लुपुत्तूर के स्थल महात्म्य में एक छोटी सी कहानी बताई जाती है, कथा बताई जाती है कि कैसे आंडाल का अवतार हुआ। वैकुंठ में भूदेवी भगवान नारायण से एक दिन कहने लगी कि हे प्रभु, आपके प्रिय वैनतेय मतलब गरुड़, वो आपकी सेवा कर रहे हैं पृथ्वी लोक पर। वैनतेय क्यों उनका नाम? क्योंकि गरुड़ जी के माता का नाम है विनता, विनता के पुत्र हुए वैनतेय। तो आपके शुद्ध भक्त वैनतेय अब विष्णु चित्त के रूप में पृथ्वी लोक पर आपकी सेवा कर रहे हैं। उनके कार्यों से, उनके उपदेशों से वो आपकी शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। मैं भी उनकी पुत्री बनकर मैं पृथ्वी लोक पर प्रकट होना चाहती हूं आपकी सेवा करने के लिए, ताकि मैं भी आपके प्रचार कार्यक्रम में भाग ले सकूं। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि अवश्य तुम वहां पर जाओगे और गोदा देवी या अंडाल के रूप में प्रकट हो जाओगी, और मैं केवल उन मालाओं को पहनूंगा जो कि तुम पहले पहनोगी, और उसके बाद मैं उन मालाओं को पहनूंगा। तुम तुम्हारे भक्ति से सारे द्रविड़ देश में तुम प्रचार करोगी अपने कार्यों से, अपने कविताओं से। हालांकि तुम मेरी निजी पत्नी होगी, लेकिन फिर भी तुम मनुष्य रूप में वहां पर रहोगी, और फिर तुम्हारा विवाह मेरे साथ होगा और पुनः तुम यहां पर मेरे पास वैकुंठ लोक में चली आओगी। और इस वैकुंठ लीला के इस संवाद के अनुसार फिर भूदेवी ने वैकुंठ में से यहां द्रविड़ देश में श्री विल्लुपुत्तूर में पेरियालवार के पुत्र के रूप में जन्म लिया। ये है आंडाल की सुंदर कहानी। इससे हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। आंडाल का विवाह जब हुआ तब आंडाल की उम्र बहुत कम थी, शायद 15 साल ही थी, उससे ज्यादा नहीं थी। तो हम देखते हैं कि ऐसे कितने महान भक्त इतिहास में हुए हैं जो इतने प्रसिद्ध हुए हैं लेकिन उनकी आयु ज्यादा नहीं थी। अच्छा भक्त बनने के लिए हमें लंबी आयु की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को लंबी आयु मिल जाती है लेकिन भक्ति भाव नहीं है तो क्या फायदा। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ऐसे कितने सारे पेड़ हैं जो कि कितने लंबी उम्र जीते हैं, क्या फायदा। तो कितने साल हम जीते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर हमने कम जिए, कम जीवन की अवधि है लेकिन हमने भक्ति भाव से जिया, तो वो छोटा सा जीवन अति मूल्यवान है। परंतु एक भगवत भक्तिहीन लंबा जीवन व्यर्थ है। चैतन्य महाप्रभु भी 50 साल भी नहीं रहे पृथ्वी लोक के ऊपर, लेकिन उन्होंने क्या क्या करके दिखाया। उसी प्रकार से अनेक ऐसे भक्त हुए और आंडाल केवल यहां 15 साल रही। सारे आलवारों में से, 12 आलवारों में से आंडाल केवल एकमात्र महिला है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि भक्ति मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पुरुष है कौन स्त्री है, क्योंकि भक्ति के जो नियम है वो केवल एक ही है, और वो क्या है, भक्ति। और इसीलिए वैदिक नियम से श्रेष्ठ ये भक्ति भावना है। वैदिक नियमों के अनुसार थोड़ा कुछ भेद होता है पुरुष और स्त्रियों में, लेकिन भक्ति में ऐसा कोई भेद नहीं है। जैसे वैदिक सिद्धांत के अनुसार उपनयन जो है वो केवल पुरुषों के लिए होता है, स्त्रियों के लिए नहीं होता। गायत्री मंत्र का जाप जो है केवल पुरुष करते हैं, स्त्रियां नहीं करती हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं। हालांकि पुरुष और पति और पत्नी दोनों यज्ञ संपन्न करते हैं, दोनों यज्ञ के समय होते हैं। अगर पत्नी नहीं होती तो पति यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यज्ञ करना है तो केवल ब्राह्मण करेंगे, ब्राह्मण ही नहीं करेंगे। ये वैदिक पद्धति है, परंतु भक्ति में कोई अड़चन नहीं है। एक चाहे हमें कोई स्त्री शरीर मिले, पुरुष शरीर मिले, हम भक्ति के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकते हैं इसी देह में, क्योंकि भक्ति इस देह बुद्धि से परे है। यहां ना तो कोई जाति भेद है, जाति का विचार है, ना यहां कोई आर्थिक परिस्थिति का विचार है, ना देश धर्म का विचार है, ना कोई ऊंच नीच का, पुरुष स्त्री का विचार भी नहीं है। यहां सभी लोग केवल भगवान के दासानुदास हैं। यहां पे केवल आत्मा का विचार है। आत्मा की ना तो जाति है, ना देश धर्म है, ना पुरुष ना स्त्री है, ना कोई लिंग है आत्मा का। आत्मा केवल भगवान श्री कृष्ण का दास है। इसलिए सभी को, चाहे कोई पुरुष हो स्त्री हो, इस जाति के उस जाति के, सभी को मिलजुल कर बड़े भक्ति भाव से, नम्रता से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और जैसे आंडाल ने पथ दिखलाया है, तीव्रता से भगवान का भजन करते हुए हमें प्राण त्यागने चाहिए, भगवान के धाम में वापस लौटना चाहिए। श्री गोदा देवी श्री आंडाल की जय। हरे कृष्णा। तो 2 मिनट बचे हैं, आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, पीछे माइक। हरे कृष्णा।
एक ऐसे रिलीजियस फंक्शन में कहा जा रहा था कि ये वैष्णव या वैदिक सिस्टम में पुरुषों को जनिवास दिया जाता है, जैसे उनका उपनयन संस्कार होता है, और स्त्रियों को नहीं होता है। ये बोल रहे थे कि उनके जो समाज का सिस्टम है वो तो जो बांधे को देते हैं स्त्री और पुरुषों को देते हैं, ये यहाँ पे भेद होता है और हम लोग भेद नहीं, तो ये क्या है?
नहीं, वास्तव में अगर शास्त्रों के आधार पर जाना है तो जब उपनयन संस्कार होता है, जैसे कोई ब्राह्मण वर्ण का है तो उसके उपवीत में, उसके जनों में 3 धागे होते हैं। जब विवाह होता है, वो गृहस्थ हो जाता है, तो उसको 6 धागे आ जाते हैं, 3 अपने लिए, 3 पत्नी के लिए। लेकिन पत्नी महिलाओं को उपवीत नहीं दिया जाता, ये वैदिक पद्धति नहीं है। परंतु पत्नी को पति के किए हुए धार्मिक क्रियाओं का 50% लाभ बैठे बैठे मिल जाता है, केवल पति की सेवा करने से और पति के साथ धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने से। जो भी पति तपस्या करते हैं उसका फल पत्नी को मिल जाता है, और पत्नी अगर करती है तो पति को वैसे मिलता नहीं, लेकिन फायदा अवश्य होता है, क्योंकि पत्नी की सेवा से पति भी आगे भक्ति में बढ़ सकता है अच्छी तरह से। ठीक है, ला देवी के बारे में बताइए। वैसे विस्तार में नहीं बताएंगे, इतना ही कहेंगे कि श्री देवी, भू देवी, नीला देवी भगवान की 3 विशेष शक्तियां हैं, और इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, अस्तित्व शक्ति, और इन 3 शक्तियों को के मूर्तिमान रूप हैं, और हमेशा ये भगवान की सेवा में रहती हैं। ये इच्छा शक्ति के 3 भाग हैं, और आप भागवत में भी पढ़ेंगे कई बार जब भगवान प्रकट होते हैं, ये वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी भी करते हैं कि भगवान अपने शक्तियों से घिरे हुए थे, श्री देवी, भू देवी, नीला देवी, फिर नंद सुनंद, फिर चतुष्कुमार इत्यादि। तो ये भी भगवान की एक शक्ति ही है। और एक प्रश्न, हाँ, हरे कृष्णा। इसके बारे में अधिकृत जो जानकारी है, जो प्रामाणिक जानकारी है, वो नहीं है। मीराबाई अवश्य एक भक्त है, भगवान कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण की भक्ति करती थी। वैसे साधारणतः हमें यह नहीं मानना चाहिए कि उन्होंने सायुज मुक्ति प्राप्त की, हालांकि लोग ऐसे कहें या ना कहें, मीराबाई विशेष भक्तों में से एक हैं, क्योंकि साधारणतः भक्तों को चाहिए कि वो कोई संप्रदाय में इस भक्ति के पथ को स्वीकार करें। मीराबाई ने ऐसा कोई संप्रदाय स्वीकार नहीं किया, ऐसे गिने चुने रहते हैं भक्त। लेकिन ऐसे गिने चुने भक्तों को हम सम्मान भी देते हैं, लेकिन संप्रदाय में नहीं होने की वजह से हम ठीक से उनके बारे में ज्यादा विस्तार में चर्चा नहीं कर सकते। हालांकि हम मानते हैं ये भी एक भक्त थी, तो ये सायुज मुक्ति के लक्षण तो नहीं थे मीराबाई के। सायुज मुक्ति क्या है और कौन चाहता है? सायुज मुक्ति मतलब जब हम भगवान में लीन होना चाहते हैं, हमारे अस्तित्व को नष्ट करना चाहते हैं और हम अपने आप को ही भगवान सोचते हैं। सायुज मुक्ति में सेवा भावना नहीं होती, प्रेम भक्ति नहीं होता है। इसलिए हम ये नहीं मान सकते हैं कि मीराबाई को है जो सायुज मुक्ति मिला। लेकिन गौड़ी वैष्णव आचार्यों ने इसके बारे में ज्यादा विस्तार में टीका नहीं किया है, इसके बारे में हम भी ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। हरे कृष्णा। कहाँ पर?
श्रीरंगम
में। हाँ, वैसे श्री विल्लुपुत्तूर के स्थल महात्म्य में जिसका वर्णन हमने किया, उसमें अंत में जब भगवान श्री हरि भूदेवी की इच्छा को स्वीकार करते हैं, अंत में वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी अर्चा मूर्ति जगह जगह द्रविड़ देश में स्थापित होगी, और जो इस रूप में तुम्हारी उपासना करेगा अवश्य उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान का वरदान है, भगवान की इच्छा है कि अंडाल की मूर्ति भी होनी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि श्रीरंगम में भी अंडाल की मूर्ति भी है। हरे कृष्ण।
पेरिया अलवार उनको वटपत्र भगवान से आसक्ति हुई थी, कभी कभी हमारा भी ऐसा होता है, इस्कॉन के मंदिर बहुत है लेकिन एक खास फिगर से हमारे आसक्ति होती है, और कई भक्तों की भी ऐसे भक्तों के विषय में ऐसे आसक्ति होती है, तो ये उचित है या नहीं?
उचित है या नहीं अलग, लेकिन गलत भी नहीं है, स्वाभाविक है। हम जिस विग्रह की सेवा करते हैं, सेवा से आसक्ति हो जाती है, ये एक मूल सिद्धांत है भौतिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से। तो स्वाभाविक है कि यहाँ जो राधा गोकुलानंद की ज्यादा सेवा करते हैं, उनको राधा गोकुलानंद से ज्यादा आसक्ति है। हालांकि राधा गोकुलानंद में, राधा गोविंद में, राधा और कितने भी मंदिर हैं श्याम सुंदर में, कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है। यह है भक्ति। जैसे जो 108 दिव्य देशम में है भगवान के विविध रूप, सब एक ही है, वही भगवान है, फिर भी अलग अलग, अलग अलग भावों में। ठीक है, हाँ भक्तों के लिए भी ठीक है, वो स्वाभाविक है, परंतु फिर भी सब भक्तों के साथ हमारा प्रेम होना चाहिए, सबको सम्मान की दृष्टि से ही देखना चाहिए। तो ये भक्तों के लिए अच्छा है, सबके साथ प्रेम से रहें और एक साथ भगवान के धाम में चले जाएं। कुरेश की पत्नी का नाम अंडाल है और हम अंडाल में, और ये अंडाल में क्या फर्क है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? हाँ अलग अलग हैं, क्योंकि अंडाल, इस अंडाल अलवार, अंडाल अलवार की बात तो 5000 वर्ष पहले की है, और कुरेश की पत्नी अंडाल तो केवल रामानुजाचार्य के समय में आई, जिसके भी 1000 साल भी नहीं हुए। तो क्योंकि फिर श्री वैष्णव संप्रदाय में घर घर में लोग अंडाल के पीछे लड़कियों के नाम रखते हैं, लक्ष्मी के पीछे, श्री देवी के पीछे, भू देवी, ऐसे अलग अलग नाम रखते हैं, तो ये अलग है, हम रखा गया था। तो याद है ये बात कि कुरेश की पत्नी का नाम था अंडाल। अंडाल कृष्ण के प्रति चाहती थी, फिर रंगनाथ से कैसे विवाह किया? हाँ, क्योंकि कृष्ण, वृंदावन कृष्ण अपने उस बांसुरी बजाने वाले रूप में उपस्थित नहीं थे वहां पर। तो दिव्य देशम में जब वर्णन किया पेरियालवाल ने, हर एक मूर्ति का वर्णन किया, और अंत में जब वो रंगनाथ भगवान का वर्णन करने लगे, उस समय इस विशेष रूप के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति अंडाल के हृदय में हो गई, इसलिए उन्होंने रंगनाथ से ही विवाह किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।